ओम शांति। बाबा के श्रीमत प्रमाण हम बच्चे बाप समान निराकारी स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं। जिस अभ्यास के द्वारा हम आत्माएं ये साकार शरीर छोड़ निराकार बाप के साथ निराकार घर में जाकर फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। ये हम आत्माएं बाबा के श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ कर रहे लेकिन इस पुरुषार्थ में मुख्य विघ्न आता है, वो है देह अभिमान। जैसे आज की मुरली में था, सुना होगा कि देह अभिमान आते ही माया का चमाट लगता है और देही अभिमानी बनते हैं तो बाप की हर श्रीमत की पालना करते हैं। तो जब देह अभिमान आता है, माया की चमाट लगती है, माया की चमाट अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी न किसी विकारों के वशीभूत हो जाना। तो जब आत्मा विकारों के वशीभूत होती है तो उसके मुख से और मन से क्या शब्द निकलता है? मैं। और जैसे मैंपन आता है, देह अभिमान का सबसे रायल रूप है मैंपन। और जब देह अभिमान का मैंपन आता है तो मैंपन आने से पांच प्रकार की कमियां तुरंत आ जाती है। देह अभिमान का मैंपन आने से पांच प्रकार की कमी आती है, क्योंकि मैं तीन प्रकार का है। एक देह अभिमान का मैंपन, दूसरा है दिल शिकस्त का मैंपन और तीसरा है आत्मा का मैंपन। तो जब देह अभिमान का मैंपन आता है तो पांच कमियां आती हैं। जिस पांच कमियों के कारण आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर पाती है, वो पांचों कमी है। पहला है लगाव, दूसरा है टकराव, तीसरा है प्रभाव और चौथा है दबाव और पांचवा है अभाव। लगाव, टकराव, प्रभाव, दबाव, अभाव, ये पांच कमी देह अभिमान के मैंपन आने से आती है। दूसरा मैंपन है दिल शिकस्त का। दिल शिकस्त में भी यही कहते हैं ना, मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता है, शायद मेरी तकदीर ही ऐसे है। तो दिल शिकस्त का मैंपन आता है तो भी पांच कमियां आती हैं, बहुत लेकिन मुख्य पांच। पहली है जब देह अभिमान से पांच कमी, दिल शिकस्त से पांच कमी, पहली कमी उदासी, उदासी आ जाना। दूसरी कमी पुरुषार्थहीन बन जाना। तीसरी कमी ड्रामा का उल्टा प्रयोग करना, ड्रामा का उल्टा प्रयोग करना। चौथी कमी भगवान के प्रति रिगार्ड और समर्पण होने की भावना खत्म हो जाना। और पांचवें कमी है खुशी गायब हो जाना, खुशी गायब हो जाना। तो ये पांच कमी दिल शिकस्त की है। और तीसरा मैंपन है आत्मा का। जब मैं आत्मा हूं ये स्मृति रहती है तो मुख्य रूप से पांच प्राप्तियां होती है। प्राप्तियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुख्य रूप से पांच प्रकार की प्राप्ति होती है। पहली प्राप्ति है कि पाप के हर श्रीमत की पालना आप करते रहेंगे। इसका फल बाप का आशीर्वाद या दुआ मिलता रहेगा। दूसरी प्राप्ति आत्म अभिमानी होने के कारण आपका पुरुषार्थ निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तीसरी प्राप्ति आप निरंतर योगी बन जाएंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे। चौथी प्राप्ति बाप समान की स्थिति बहुत जल्दी बन जाएगी। बाप समान की स्थिति बहुत जल्दी बन जाएगी। और पांचवा है आपके चलन और चेहरे के द्वारा सेवा होती रहेगी। तो ये मुख्य पांच प्राप्तियां हैं। तो दो मैंपन का त्याग करना है, एक देह अभिमान का मैंपन, दूसरा दिल शिकस्त का मैंपन। ये त्याग करना है और मैं आत्मा हूं इस मैंपन को धारण करना है, क्योंकि इस धारणा से प्राप्ति है, मैं आत्मा हूं, और उस दो मैंपन से नुकसान है। तो विस्तार में एक एक पर विजय कैसे प्राप्त हो आपको बतलाते हैं। पहला है देह अभिमान का मैंपन, उसमें जो पांच कमियां आती हैं, पहला है लगाव। लगाव दो चीज दुनिया में है, या तो व्यक्ति है या तो प्रकृति है। व्यक्ति और प्रकृति, तो चाहे व्यक्ति से हमारा संबंध है, चाहे लौकिक संबंध है, चाहे कार्य व्यवहार अर्थ संबंध है, लेकिन व्यक्ति से संबंध है, और प्रकृति से सुख प्राप्त होता है, साधन है। तो व्यक्ति और प्रकृति, इन दोनों में आत्मा आजकल आसक्त हो गई है। संबंधों में विकार आ गए, प्रकृति के प्रति भी लोभ वृत्ति बढ़ गई है, इस कारण से दुख मिलता है। तो जो संबंधों में लगाव आ गया है, जिसको मोह का रूप कहें, इससे कैसे मिटे। चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे लौकिक परिवार में हैं, किसी के साथ हैं, अलौकिक में हैं, अगर हमारा अटैचमेंट है बाबा के श्रीमत के विपरीत है, तो वो नुकसान देगा। लेकिन आत्मा का 63 जन्म से उन्हीं के साथ रहने के कारण वो जैसे नेचुरल हो गया है। अभी बाबा ने हम सबको ज्ञान दिया कि वो तो सिर्फ पार्ट के साथी हैं, असली संबंधी, असली साथी तो तुम्हारा भगवान है, अविनाशी है, अनादि है, सदा है। जबकि लौकिक संबंधी हर एक जन्म के अलग अलग हैं, लेकिन भगवान तो सदा है, रहेगा। तो जो अविनाशी है वो भूल गया, और जो परिवर्तनशील है उसमें हमारी बुद्धि अटक गई। अब बाबा कहता है इनसे अपना बुद्धि योग निकालो और मेरे साथ लगाओ। लेकिन आप 24 घंटा में 23 घंटा आप लौकिक परिवार वालों के साथ रहते हो, उनके साथ खाना पीना रहना दुख दर्द हर समय। एक घंटा के लिए आप सेंटर पर जाते हो क्लास करने, क्लास योग सेवा जो भी है, तो आपको 23 घंटा वाली याद रहेगी या एक घंटा वाली याद रहेगी? कौन सी याद रहेगी बोलो पांडव? 23 घंटा ना, क्योंकि रहते ही उन्हीं के साथ है, दुख सुख उनके साथ है। लेकिन बाबा कहता उनको भूलना है और एक मेरे साथ संबंध जोड़ना है, उसकी विधि है कि आप सोचो कि मैं आत्मा प्रेजेंट में ब्राह्मण आत्मा बनी हूं। आप ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो जब आप ब्रह्मा कुमार या कुमारी हैं तो आपका प्रैक्टिकल में सर्व संबंधी कौन है? कौन है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, वही आपका माता पिता टीचर सखा स्वामी गुरु सब कुछ वही है। आपको लौकिक संबंध तब खींचता है जब आप ये भूल जाते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, बीके हूं, ये भूल जाते हो और अपने को पुराना संबंध वाला ही शरीर समझते हो। मैं सास हूं, बहू हूं, बेटा हूं, बेटी हूं, पति हूं, ये भान रहता है। इस भान के कारण आपका लौकिक के साथ अटैचमेंट होता है। आप इसी स्मृति में पैसा भी कमाते, इसी स्मृति में खाना भी बनाते, इसी स्मृति से व्यवहार में रहते हो, इस कारण से आपका अटैचमेंट बढ़ जाता है, लगाव हो जाता है। फिर इनसे छूटना चाहे तो भी नहीं छूट पाते। योग में बैठोगे तुरंत लौकिक की याद आ जाती है, काम धंधे की याद आ जाती है, क्योंकि उन्हीं के साथ रहे। लेकिन बाबा कहता सारे दिन के अंदर बार बार ये चेक करो कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, इस स्मृति में हूं, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की स्मृति में हूं। जितना आपको ये रहेगा कि मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूं, इससे सबसे बड़ा फायदा होगा आपको ब्रह्मा बाप की याद बनी रहेगी। ब्रह्मा बाप की याद होने के कारण आपको ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अति सहज हो जाएगा। अगर ब्रह्मा बाप को फॉलो कर लिया तो शिव बाप समान बनने में देरी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाप समान बन चुका है। तो पहला फायदा होगा ब्रह्मा बाप को फॉलो करना सहज हो जाएगा। दूसरा फायदा होगा ब्रह्मा बाप की आशीर्वाद मिलेगी। ब्रह्मा बाप की आशीर्वाद मिलती है कैसे अनुभव हो, बहुत सुंदर शब्द है। आपको अनुभव होगा कि जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हो, उस कर्म में पुरुषार्थ में, तो ऐसा महसूस होगा कि बाबा सामने खड़ा है, कहता है शाबाश बच्चे, शाबाश बच्चे, शाबाश बच्चे। तो जो शाबाश शाबाश बाबा का आएगा, ये है बाप का आशीर्वाद, ये है बाप का दुलार, बाप का प्यार। और ब्रह्मा बाप का आशीर्वाद, ब्रह्मा बाप का प्यार और दुलार हमारे काफी पापों को नाश कर देता है।
और
ब्रह्मा बाप की याद रहने से तीसरा फायदा होगा कि शिव बाबा की याद निरंतर बनी रहेगी। फिर दो दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा था कि कई बच्चे कहते हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा को नहीं मानते। तो शिव बाबा ने कहा था ये भी देह अभिमान है, शिव बाबा बिना ब्रह्मा के कुछ दे नहीं सकता है, ब्रह्मा थ्रू है। तो अगर ब्रह्मा बाबा की याद है तो शिव बाबा की याद रहेगी ही रहेगी, अर्थात बाप दादा दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। तो लगाव से मुक्ति की विधि है सदा अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझो, मुझ ब्राह्मण आत्मा का सर्व संबंधी बाप दादा है। इसका मतलब ये नहीं कि लौकिक संबंधी को छोड़ देना है, नहीं, रहना सबके साथ है, लेकिन अपने मन के भावों को चेंज करके। जैसे मान लो आपकी बेटी है या बेटा है, कोई भी रिश्ते का है, मान लो बेटी है, अगर आप उसको इस स्मृति से देखा कि ये मेरी बेटी है, तो उस समय क्या आप ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हैं उस समय? क्या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को बेटी होती है? उस समय आप ये भूल गए, आप अपने पास्ट जीवन को देख रहे, पास्ट जीवन से समझ रहे हैं ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं या इसकी माँ हूं। ये तो आप जब शिव बाबा के नहीं बने, ब्राह्मण नहीं बने, तब आप थे। अब तो आपका खुद ही माता पिता शिव बाबा हो गया, अभी तो आप खुद ही आप बाबा के बच्चे बन गए। तो जब बेटी को देखो तो बेटी के भान से नहीं देखो, लेकिन ये भी शिव बाबा की बच्ची है या ब्रह्मा बाबा की बच्ची है, इस भान से देखो। तो ब्रह्मा बाबा की बच्ची है या शिव बाबा की बच्ची है, तो आपका उस आत्मा से बहुत रूहानी प्यार उत्पन्न होगा, और उस आत्मा का भी बाबा की तरफ बुद्धि योग जाएगा। तो परिवार में रहते हुए दोनों अलौकिक हो जाओगे। ये बहुत सुंदर विधि है परिवार में रहते हुए न्यारा बनना, लगाव मुक्त बनना, नष्टो मोहा बनना, छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन नष्टो मोहा बनना जरूर है। दूसरा है टकराव। आपस में टकराव क्यों होता है? चाहे व्यक्ति व्यक्ति से, चाहे परिवार परिवार से, समाज समाज से, सेंटर सेंटर से, किसी से भी टकराव क्यों होता है? उसका एक ही कारण है, मिसअंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे के मन के भावों को ठीक से ना समझना। जैसे आपको एक हम अपना उदाहरण देते हैं, जो प्रैक्टिकल मेरे साथ बीता है। हम जब इस ज्ञान में चले, दिल्ली में थे, तो रेलवे में नौकरी करते थे, तो जो पेमेंट मिलती थी सीधी तनख्वाह लाकर टीचर के हाथ में दे देते थे। सोचते थे मेरे पास रहेगा तो पैसा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए टीचर के हाथ में दे देते थे और जितनी जरूरत होती थी मांग लेते थे, टीचर बहन देती थी। तो ऐसे कुछ दिन के बाद ठंडी का दिन आया, जैसे अब ठंडी आई है, तो ठंडी लगी तो मैंने टीचर बहन से कहा मुझे 30 रुपए दे दो। उस समय 30 रुपए का गरम साल मिलता था, ये 72 की बात है। मैंने कहा मैं 30 रुपए दे दो, एक साल लेना है। अच्छा, बहन जी जो टीचर बहन थी, बैंक में जॉब करती थी, टाइम हो गया था, वो जा रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं अभी पैसे नहीं दूंगी। अब वो इतना कहकर तो चली गई कि अभी पैसे नहीं दूंगी। इधर मुझे साल लेना था और बहन जी ने पैसा के लिए मना किया। अब मेरे अंदर निगेटिवपन का तूफान उठ गया कि मेरा पैसा मेरे को ही बहन जी मना कर रही है, हमको ही नहीं दे रही है और खुद दो दो साल ओढ़ के घूम रही है। ऐसे निगेटिव संकल्प चलने लगा और यहां तक संकल्प चल गया, क्योंकि जब निगेटिव चलता है तो एक के पीछे दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा विकराल रूप ले लेता है। तो संकल्प आ गया अब हम इस आश्रम पर नहीं जाएंगे। तो ऐसे सोचते रहे, रात को नींद भी नहीं आई, लेकिन कहीं रात को थोड़ी नींद आई तो 2 बजे रोज सुबह उठते थे, 2 बजे फिर आंख खुल गई। तो जैसे उठ करके थोड़ी देर योग करते थे, फिर उसी समय खाना बनाते थे, 5 बजे तक नाश्ता कर लेते थे, फिर दोपहर का खाना टिफिन में लेकर सेंटर पर जाते थे, 5:30 तक सेंटर की सफाई, झाड़ू पोछा लगाना करना ये करते थे। तो 2 बजे उठे, योग किया जैसे रोज करते थे, खाना बनाया, नाश्ता किया। अब जब टाइम हुआ 5:30 बजे का, इतनी जोर की खेंच हुई सेंटर की तरफ जाने का कि अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने संकल्प किया अच्छा सेंटर पर तो जाऊंगा, लेकिन मैं क्लास में सबसे पीछे बैठकर ऐसे से नीचे किए हुए मुरली सुन के चुपचाप चलाऊंगा। और यही सोच करके मैं चला। थोड़ा लेट हो गया इन संकल्पों के उलझन में, तो जब मैं 5:30 बजे नहीं पहुंचा तो बहन जी को संकल्प चला कि शायद मैंने कहा था इसके कारण तो नहीं उसको फीलिंग आ गई। तो बहन जी ने क्या किया, 2 साल लेकर के वो गेट पर खड़ी हुई थी। तो जब मैं आया ऐसे से नीचे किए हुए जा रहा था तो मैं तो देखा नहीं इधर उधर, तो बहन जी ने कहा रामलोचन भाई ओम शांति। अब बहन जी जब बोल ही रही है तो खड़ा होना पड़ा, ओम शांति रिस्पांस देना ही पड़ा। और जब ओम शांति मैंने कहा फिर रिटर्न में बहन जी ने तुरंत 2 साल दिया। मैंने कहा बहन जी कल पैसा मांगा और आपने दिया नहीं, आज आप 2 साल दे रहे हो। तो बहन जी ने कहा मेरे पास 5 साल पड़ा है बेकार में। तो मैं कहा वही आपको दे दूंगी, आपका पैसा बचा रहेगा। अब देखो बहन जी की मेरे पर कितनी शुभ भावना, कितनी महान भावना और हमारा कितना निगेटिव संकल्प। तो ये तो चलो अगले दिन तक खत्म हो गया, बाबा की शक्ति थी, बाबा की दया दृष्टि थी, हो गया। नहीं तो इस मिस अंडरस्टैंडिंग से ज्ञान छोड़ने तक की नौबत आ गई थी। तो जो टकराव होता है इसका मुख्य कारण है मिस अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को ठीक से ना समझना, तुरंत उतावलापन में आकर जवाब दे देना, इस कारण से टकराव होता है। जब कोई कुछ भी कहता है थोड़ी देर बाबा को सामने लाकर उस चीज को सोचो, जहां बाबा सामने आ जाएगा बात यथार्थ क्लियर हो जाएगी, तो टकराव खत्म हो जाएगा। दूसरा है, तीसरा प्रभाव। हम किसी पर प्रभावित होते हैं, किसी की विशेषताओं पर, किसी के गुण पर। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था प्रभावित होना अर्थात बर्बाद होना, क्योंकि प्रभावित होने का अर्थ है कि भगवान के प्रभाव से दूर होकर व्यक्ति के प्रभाव में आ जाना। अगर भगवान के प्रभाव से दूर हो गए तो व्यक्ति से क्या मिलने वाला है, मिलेगा तो सब कुछ बाबा से। तो एक प्रश्न उठता है, तो क्या हम किसी की विशेषता ना देखें, क्या किसी की विशेषता का वर्णन ना करें, जबकि बाबा कहता विशेषता ही देखनी है। विशेषता देखो वर्णन करो, लेकिन इस संकल्प के साथ कि इस आत्मा में जो ये विशेषता है, शुक्रिया बाबा आपने इसमें इतनी विशेषता भर दी है, मीठे बाबा आज से हम आत्मा भी पुरुषार्थ करेंगी, इस आत्मा जैसी विशेषता धारण करके बाबा का नाम बाला करूंगी। आपका नाम बाबा बाला करूंगी। बीच में बाबा को डालो, विशेषता बाबा की देन है। पहले ये विशेषता उस आत्मा में नहीं थी, पहले तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था। जब ज्ञान मिला तब ये विशेषता आई, तो ये विशेषता तो बाबा की देन है। तो किसी की विशेषता को देखते हुए उस पर प्रभावित नहीं हो, लेकिन बाबा को थैंक्स दो और अपने में भी वो विशेषता धारण करने का संकल्प करो कि हम भी ऐसी विशेषता धारण कर इस आत्मा जैसे महान आत्मा बनूंगी। इससे आपका कल्याण और उस आत्मा के प्रति आपका रूहानी प्यार उत्पन्न होगा, अलौकिक प्यार उत्पन्न होगा, जिससे दोनों आत्माओं का कल्याण होता रहेगा। चौथा है अभाव। अभाव माना कमी। ये आप बाबा की मुरली में सुनते हैं, अपरापत कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। अगर ब्राह्मण आत्मा को कोई चीज की कमी है, जितनी आवश्यकता है, लालच नहीं आवश्यकता है, अगर उसमें कमी है, तो अभी आप सच्चे ब्राह्मण नहीं बने हो। सच्चे ब्राह्मण में कमी आ नहीं सकती। सच्चे ब्राह्मण का माँ बाप स्वयं भगवान प्रैक्टिकल में है। ऐसे बच्चे को कोई भी चीज ना स्थूल ना सूक्ष्म, दोनों कभी नहीं आएगी। स्थूल में भी धन की प्राप्ति जितना आपको आवश्यक है, चाहे परिवार के खर्चा के लिए, चाहे सेंटर पर किसी बाबा के यज्ञ की सेवा के लिए चाहिए, उतना बाबा देगा। अगर आप सच्चे ब्राह्मण हैं तो, सच्चे ब्राह्मण माना एक बाप दूसरा न कोई स्मृति में, और ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाला, कदम पिछाड़ी कदम रखने वाला सच्चा ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मणों के लिए भगवान बांधाए बांध है। स्थूल पैसा भी आपको आवश्यक है तो बाबा देगा, कहीं न कहीं से, कैसे न कैसे, किस न किस रूप से जरूर देगा। क्योंकि 63 जन्म में आपके साथ बहुतों का हिसाब किताब रहा है, किसी को आपने दिया हुआ है वो पता ही नहीं है, किसी से लिया हुआ है पता ही नहीं है। लेकिन जब आप बाबा के बनते हैं, कल्प का अंत का समय है, तो बाबा वो सब खाता आपको दिला देता है। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूं, यहां गुजरात का एक बहन थी जिसका नाम था छुग्गी दादी। जब बाबा अव्यक्त हो चुका है तब की बात है, गुजरात में रहती थी। तो नया नया सेंटर खुला था, थोड़ा दिन हुआ था, 15-20 स्टूडेंट आते थे। तो दादी को संकल्प आया, छुग्गी दादी को, कि यहाँ मेला करें तो स्टूडेंट ढेर सारे बढ़ जाएंगे। तो वो आ करके मधुबन में प्रकाश मणि दादी को बोला कि दादी मुझे मेला करना है, आप इजाजत दो। तो दादी ने पूछा कितना पैसा इकट्ठा है, क्योंकि मेला करने में तो थोड़ा ज्यादा खर्चा लगता है। तो बोला 10,000 है। तो दादी ने कहा इतने में मेला कैसे होगा, कम से कम 50,000 चाहिए। उस समय के आधार से 50,000 में छोटा मेला हो जाता। तो छुग्गी बहन अभी थोड़ा एक साल और रुक जाओ, तब तक पैसा इकट्ठा हो जाए, फिर मेला कर लेना। तो ये तो जी दादी करके चली गई। लेकिन जब सेंटर पर गई तो रोज सुबह उठकर बाबा से लड़ाई करती थी, मीठी मीठी लड़ाई। क्या कि बाबा आप कहते हो मैं बच्चे की हर आस पूरी करता हूं, जो सच्चे बच्चे हैं उन पर साहब राजी है, उनकी सब इच्छाएं पूरी करता हूं। बाबा मुझे मेला करना है, मुझे 40,000 रुपया चाहिए। बाबा मेला करना है, मुझे 40,000 रुपया चाहिए। ऐसे रोज अमृत पहले बाबा से कुछ दिन उसने कहा। तो एक दिन क्या हुआ, एक भाई करीब दिन में 9:30-10 बजे के बीच में सेंटर पर आया। तो छुग्गी दादी बैठी हुई थी वहां से, चित्र लगाए हुए थे, क्लास में बैठी हुई थी। तो वो भाई आते ही दरवाजे से पूछा, क्या आपका नाम लक्ष्मी है क्या? छुग्गी दादी का पहले का नाम लक्ष्मी था। तो बोला आप अंदर आओ, चित्र समझो। तब तक उसने दूसरा प्रश्न किया, क्या आपका इस वर्ष में शादी हुई थी क्या? तो छुग्गी दादी ने कहा इन बातों से क्या मतलब है, आप आकर के बाबा का ज्ञान सुनो, फिर उसके बाद जो पूछना होगा पूछना। फिर पूछा आपको शादी में कितना दहेज मिला था? तो छुग्गी दादी के मुंह से निकल गया मुझे पता नहीं है, क्योंकि पहले सिंधी लोग गुप्त पेटी में बंद करके देते थे, पता नहीं होता था। तो उसने कहा मैं बताता हूं, आपको 40,000 रुपये मिले थे, आपका पति हमारा दोस्त था उस समय, और मेरा बिजनेस घाटे में चला गया था। पति ने वो सीधा 40,000 रुपया मुझे दे दिया था, ये छुग्गी दादी को पता नहीं था। तो मैं वो 40,000 रुपये आपको वापस करने आया हूं। अब तो छुग्गी दादी खुश तो हुई, लेकिन बोला हम ऐसे नहीं लेंगे, पहले आकर आप चित्र समझो। तो अब मजबूरी थी, वो अंदर आया तो देखते देखते जैसे वो ब्रह्मा बाबा के फोटो पर गया, तो वहां खड़ा था उससे 3-4 कदम पीछे भाग आया और छुग्गी दादी से पूछा ये बुढ़ा कौन है? तो कहती वही तो आपको बता रही हूं। तो बोला आपको कोई मेला करना है क्या? बोला हां करना है। बोला इस बुढ़े ने मेरी नींद फिटा रखी है, रोज सुबह कहता है बेटी को मेला करना है पैसे दे के आओ, बेटी को मेला करना है पैसे दे के आओ। तो ये मैं पैसा देने आया हूं। तो कहां का कब का क्या हिसाब किताब है वो हमें पता नहीं है। बाबा के सच्चे बच्चे बनकर रहो, बाबा आपको देगा, ये बाप की गारंटी। सिर्फ बस मेरा बाबा दिल से को सच्चे बनकर तो कोई कमी नहीं रहेगी। और पांचवा है दबाव। दबाव अर्थात किसी को अपने अधिकार में चलाना, अधीनता में चलाना, ये ब्राह्मण जीवन की शोभा नहीं है। अधीनता में तब चलाते हैं जब अपने को बड़ा समझते हैं, दूसरे को छोटा समझते हैं, अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, दूसरे को कम समझते हैं। लेकिन ये हम आप सबको पता है, हम आप सभी आत्मा हैं, एक पिता की संतान हैं, ना छोटे हैं ना बड़े। हर आत्मा अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। तो अगर हम इस स्मृति से देखें कि ये भी आत्मा भगवान का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, इस स्मृति से देखें तो उस आत्मा के प्रति सम्मान उत्पन्न होगा, उसको दबाव में नहीं रखेंगे। और जहां सम्मान है वहां प्रेम भाव स्वतः आ जाता है। इसलिए बाबा कहता बच्चे सदा अपने को आत्मा समझकर आत्मक रूप से व्यवहार करते हुए मुझ परमात्मा बाप को निरंतर याद करते रहो, तो बच्चे आत्म अभिमानी बन मुझ बाप के साथ घर चलोगे और सतयुग में आकर देवी देवता बनकर राज करोगे। अच्छा, ओम शांति।